कि देखो ये तलवार हमारे पास में है, या तो तुम इस नाम को छोड़ दो कृष्ण कृष्ण का ना राम राम, और नहीं तो ये तलवार तुम्हारे सीधे गर्दन पर बैठेगी। हमें इसका डर नहीं, खंड खंड हो यदि जाए देह प्राण, बोटी बोटी हमें काट दे कोई, हम जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसको कोई छू नहीं सकता है। और ये तो तुम्हारे बिना मरे ही है, तो 10 वर्ष के बाद में, 20 वर्ष, 100 वर्ष के बाद में ये जरूर मरेगा। कोई बचने के लिए जीवन भर के आया नहीं है, ये समय मेरा शरीर चिरस्थाई रह जाएगा, मरना तो है, तुम इसी तरह से मरेंगे। अजय तुम मानेगा नहीं, अजय मैं कृष्ण नाम छोड़ ही नहीं सकता। अच्छी बात, उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, कहा जैसे इसको 22 बाजार में कोड़े लगाओ जब तक ये मर नहीं जाए। दंड दिया, उसको पकड़ के जल्लाद ले गए। घोड़े के कोड़े को देखा है आपने, पहले कितना कड़ा होता था, ऐप मारने से आदमी का दम निकल जाए। ऐसा एक बाजार में मारा, पहले बाजार में, कि उसके सब चमड़े निकल आए, मांस सब निकल आए, किंतु मरे नहीं। राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 उनके तन तन से रोए रोए से निकलने लग गया। दूसरे बाजार में ले गया, वहां पर भी मारा, हड्डी भी चकना चूर कर दी, किंतु आवाज आती रही। 22 बाजार में मारते मारते थक गए, 10-12 थे, प्राणी नहीं। ये प्रभु अब कहते हैं, प्रभु आप तो जिंदा पीर मालूम होते हैं, हम लोग जैसे देवता मानते हैं उनको जिंदा पीर, आप जल्दी से मर जाएंगे तो हम, हमारे तो स्त्री पुत्र परिवार हैं, हमको ये मारेगा और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, आपको तो आगे पीछे कोई है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगह, कुछ भी नहीं है, आप तो मरने से ही क्या है, नहीं मरने से क्या। अच्छी बात है तो मैं मर जाता हूँ, उसने समाधि लगा ली और समाधिस्थ हो गए। इन्होंने सोचा जी मर गया, काजी को संवाद दिया, खबर दिया, वो मर गया। अच्छा गंगा में मत फेंक, गंगा में फेंक देना इसकी लाश को, कब्र मत देना, नहीं तो ये वो विहिस्त में जाएगा, इसको दोजख में जाना है, गंगा में फेंक दो, बस गंगा में लेकर के उसको फेंक दिया। वो हरदास ठाकुर को गंगा में फेंक दिया और वो हरे कृष्ण करते हुए सुंदर जैसा शरीर था पहले, वैसे दूसरे घाट पर निकल करके हरे कृष्ण करते हुए। लेकिन भिखारी इसको मार करके फेंक दिया, ये मर गया था, ये कैसे जिंदा हो गया, और इसको कहीं चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। हरदास ठाकुर उस समय कह रहे हैं, जो हमें मार रहा है प्रभु उसकी आप अपराधों को छोड़ दीजिए, अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, नहीं तो इनको कष्ट भोगना पड़ेगा, स्वयं मर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, किंतु उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। ये महात्माओं का लक्षण है, उसे कोई वैर विरोध रिवेंज लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। इसके बाद में मुसलमानों को जब खबर लगी और उनके काजी को और उनके नवाब को, तो उन्होंने उनको बुलाया, कहा आप जिंदा पीर हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आपको जो इच्छा है, आपको आप पर कोई बैन नहीं रहेगा। ये हरदास ठाकुर के देखो, और हम लोगों पर थोड़ा सा ही कष्ट आया जाए ना, एक बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में थोड़ा सा हानि हो गई, ये इतना सुना नहीं मैंने, इतना भजन किया, अरे किस लिए, ये जरा समझो तो, ना मत घबराओ, भजन कभी मत छोड़ो। इसे भी और कोई अभी प्रहलाद महाराज जी पर कष्ट आया नहीं छोड़ा, ऐसे गंभीर हो करके सत्य प्रतिज्ञ हो करके भगवान का भजन करे, तब तो शरीर तो आज निकल जाएगा। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति एवं, नहीं है कोई दूसरी गति, नहीं है नहीं है नहीं है, ये तीन रेखाएं के भगवान के नाम के बिना गति कभी नहीं है, ये अनुभूति है, इसी समय सुख और शांति है। ऐसा समझ करके जिसकी दुकान में यह हरि नाम मिलता हो और पुष्ट हो, ऐसा कोई दुकान खोजो, ऐसा कोई रियलाइज सोल मिले, अंततः शुद्ध भजन करने वाला मिले। कैसे भजन करके अपने इन सब अनर्थों को दूर किया, भगवान में उसका चित्र लगता है, ऐसे एक खोजो जिस पर हम निर्भय रह करके सीख सके। हारमोनियम बजाने के सीखने के लिए एक हारमोनियम मास्टर कहे जाते हैं। आजकल कंप्यूटर चल रहा है, ऐसे ही सीख लेंगे घर में बैठे, ना कि जो एक्सपर्ट इसका है वो उसे सीखे। सब कुछ सीख सकते हैं, अपने करने से भाई नहीं होगा। अपने से कंप्यूटर पढ़ते रहे वो नहीं होगा। कोई भी चीज अपने से नहीं होती है, एक्सपर्ट की जरूरत होती है। स्कूल पाठशाला में हम जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, एक्सपर्ट के यहाँ। इस तरह से हरिनाम के जो एक्सपर्ट हैं, भजन के जो एक्सपर्ट हैं, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, उनका कुछ अनुगत्य और सेवा भी करना पड़ेगा। अभी कॉलेज में जाते हैं 400-500 रुपये लगते हैं, बोर्डिंग में रहिए तो काज में कितने पैसे लगते हैं। और इस गुरु के यहाँ जाने से जगत का कोई भी चीज वहाँ नहीं पहुँचेगा, उसको नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हृदय की श्रद्धा चाहते हैं, बस श्रद्धा दीजिए और वह आगे दे रहे। बिना ये श्रद्धा के परमार्थ नहीं देते हैं। इसका एकमात्र मूल्य है श्रद्धा। है खूब सहज किंतु है बड़ा भारी कठिन भी। यदि संत ऐसे मिल जाए जो आपको गाइड कर सके तो समझो ये भगवान आज ही मिल गए, और यदि जब तक नहीं मिले समझो ये बहुत लंबा है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर, जिन्होंने गहरा डूब करके और खोजा तब तो उनको मिल गए। आज जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इसके लिए, बस भोगों में ही लगे हुए हैं, इसी को ही जीवन का कर्तव्य समझते हैं, इसके बाद में और कर्तव्य वो पीछे पछताएंगे। किंतु का वर्षा यदि जीवन ही चला गया और उसमें भगवान का भजन नहीं किया बचपन स्थिति में, तो फिर बूढ़े अवस्था में भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं होगा। ये जीवन ऐसा है जो पूर्व जन्मों के में हमने का क्या काम किए हैं, क्या क्या उसका ये दर्पण है। एक आदमी गरीब घर में जन्म लिया, काला कल उठा हुआ, बुद्धि एकदम नहीं है, कुछ सोच समझ नहीं सकता। ये समझना कि पूर्व जन्म में इसके अच्छे कर्म नहीं थे, रोगों से घिरा हुआ है, ये समझें। अब उसके कर्मों को हम देख करके हम बतला देंगे ये भविष्य जन्म में कैसा होगा। यदि बुरे कर्म इस जन्म में भी है तो देखेंगे ये दुख भोगेगा, और अच्छे कर्म है और यदि भगवत भक्ति इसमें कर रहा तो समझें कि आत्मा की अनुभूति पा करके और सहज ये भव सागर से तर जाएगा, भगवान के चरणों को पा करके ये आनंदमय हो। इसलिए अपने जीवन को हम लोग ऐसे लगाएंगे, अरे काम तो करना ही है, काम कौन नहीं करता है, सभी लोग करते हैं, एक पशु भी करता है, किंतु मनुष्य जीवन में इन सबको करते हुए जीवन निर्वाह के लिए जो कर रहे हैं करो, कोई इसमें हानि नहीं है। मजदूरी करना कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि चोरी चमारी डकैती और आजकल के राजनीतिक जैसे जो एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री एक दूसरे मंत्री लोग बन करके और लाखों रुपए घूस लेकर के, ये सब पाप है। मजदूरी करना पाप नहीं है, कोई काम करना पाप नहीं है। जो जिस काम में जिसके अनुसार में है वो करता हुआ भगवान का भजन कर, भगवान का भजन करना ही जीवन का अंतिम गोल, एक गोल होना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए हम कुछ भी कर सकते, इसलिए इन सब कर्मों को करते हुए बड़े प्रेम से संसार में रहते हुए भाई भगवान का भजन करो। ये एक स्कूल या पाठशाला है, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन ये है, ये जगत शिक्षा का स्थल है, पाठशाला है। जैसे हम संसार में लोगों से प्यार करते हैं वही प्यार थोड़ा सा निकाल करके भगवान को देना है, बड़ी बात नहीं है, किंतु बड़ी भारी भी बात है, नहीं हो पाता है। जैसे हम अभी प्यार से दूसरों से करते हैं ना प्यार, यही शुद्ध करके भगवान के चरणों में ले। एक बार मैंने जब गुरु जी के पास आया तो हमने लिखा पत्र,
कथा सुनने के लिए, भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे। जो कुछ आवश्यकता थी उनको क्या अरेंजमेंट करना था, तंबू की जरूरत हुई, माइक की जरूरत हुई, ढोलक हारमोनियम की जरूरत हुई, न किस चीज की जरूरत थी। वहां जो जो लोग आए उनको पानी की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं, बस एक हरि कथा सुनेंगे। ये भी गड़बड़ करता है, धान को बांट देता है। दो आदमी भी बैठते हैं तो माइक की जरूरत है। ये सब क्या चीजें हैं? ये बच्चे आकर के देखिए इनका डाइवर्ट मन कर देगा, तब तो वो कीर्तन का जो भाव है नहीं आएगा, उनके शब्दों का जो तात्पर्य है, भाव है, हृदयंगम नहीं होगा सबका चीज, तो घर में घर बैठे तो क्या कीर्तन होगा। इसलिए ये कीर्तन ठीक नहीं है। कीर्तन में कोई उपाधि ना हो, ऐसी चीज हो, बस एक एम लक्ष्य हो, चित्त उसमें लग जाए। अभी कोई उसको ठीक कर रहे हैं, क्या है टेप रिकॉर्ड को ठीक, कोई उसको ठीक कर रहा है, कोई इधर में आ रहा है, कोई टेप वहां से यहाँ रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर आ रहा है। चित्त को एकाग्र कीजिए, चीज की अब जरूरत है जो है बस भाई वो बेटा भी बैठ जाओ, इधर आओ बैठ। जरूरत नहीं तो पहले से लगा करके तब फिर हम करेंगे, मुख से नहीं दूंगा, नाक से नहीं दूंगा, क्यों नाक मुख से ली जाती है कि आज ये हमारा समय जो कान लेते, कान क्या चीज लेता है सब, आंख जिसको देखेगी ना कान नहीं लेगा, गाम नहीं लेंगे, वो गंदा हो गया। अरे सुनो जो मैं बोल रहा है, आंख देखती है वो गंदी चीज हम नहीं लेंगे, नाक सुगंध लेती है इसकी हमको जरूरत नहीं, वो चीज मैं नहीं देती। हाथ जिसको ग्रहण करता है का जो वो कान का जो मैं वही नहीं लूंगा। एकमात्र शब्द है उसको गुरु देता है, और शब्द के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं। जिन चीजों को हम देखते हैं उसे नहीं मिलेंगे, वो सभी मॉडर्न चीजें हैं, मर्त्य हैं। और कान जो लेता है यह शब्द ब्रह्म, ये पक्का भगवान तक पहुंचा। इसलिए कान को हम लोग लेकर के कान से ही कीर्तन सुनेंगे, उसी के भाव को आस्वादन करेंगे। अभी तो शब्द ब्रह्म गुरु कहता है, जिसे मैं उसे ठीक कर लूंगा, और ठीक करके कान के माध्यम से ये शब्द ब्रह्म दूंगा, छोटी चीज नहीं। इसलिए वो कान को लेता है, कान को जो चीज को लेता है, आंख नहीं देख सकती, मुख नहीं उसको टेस्ट कर सकता, नाक उसे सूंघ नहीं सकती, इसलिए गुरु उस चीज को लेकर के उसके माध्यम से देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं श्रुति विद्या। श्रुति किसको कहते हैं? क्या चीज, किस चीज को, भगवान क्या है कैसे हैं, ये श्रुति देखने से नहीं मिलेंगे, केवल श्रुति से मिलते हैं। पहले के लोग कख गख इस तरह से नहीं पढ़ते थे, जैसे आज कल पढ़ते हैं। आजकल तो शिक्षा बहुत बहुत महंगी हो चुकी है, और ये गंदी शिक्षा। पहले भगवत तत्व को कानों के माध्यम से वो देते थे, और उसको समस्त वेद श्रुतियां सभी कुछ उसको याद हो जाते, इसलिए श्रुति की प्रधानता पहले थी। पहले अक्षरात्मक रूप में वेद शास्त्र भागवत नहीं था, गीता नहीं थी, उसी रूप में थी, उसी को सुन करके गुरु जी से सुन करके उसको हृदय में धारण करते थे और फिर चलते।
अब ठीक है, अब चलें लो।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद बोलो हरि गोपाल बोलो
थे। इसके बीच में किसी ने संन्यास ले लिया तो संन्यास का संस्कार होता था। इसका कितना फल है मैं एक इतिहास के द्वारा भागवत के द्वारा मैं बतलाने की चेष्टा करूँ। आप लोग भी आइंदे से भगवत पूजन से भगवान नाम कीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी की प्रदीप से आरती से अपने बच्चे को संस्कार करेंगे। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को वो अच्छे संस्कार थे। वो किशोरावस्था में पढ़ने लिखने के बाद में एक योग्य लड़की से उसने शादी की। कुछ दिनों के बाद में उसके कुछ बच्चे भी हुए एक दो, किंतु उसके बाद में वो अपनी माता पिता की सेवा भी करता था, सतपथ पर चलता था, पत्नी के प्रति आदर का भाव था, पत्नी भी वैसी ही थी। कुछ दिनों के बाद में वो कहीं बाजार में गया और एक किशोरी के फंदे में पड़ गया जो वेश्या थी, बहुत सुंदर स्वर से गाती थी, सुंदरी भी थी, लोगों को आकर्षण कर लिया करती। तो इसको भी अपने रूप से और अपने सुंदर आवाज से संगीत से उसको अपने तरफ में आकर्षित कर दिया। इधर में देखिए आकर्षित कर दिया और वो घर से अपनी अच्छी अच्छी चीजों को चुरा कर और इसे दे दिया। धीरे धीरे जो कुछ आपके स्त्री के गहने आभूषण इत्यादि थे, घर में कुछ संपत्ति थी, उसको ऐसे दिया। जब कुछ उसके पास में नहीं रहा देने का, एक दिन उस वेश्या ने उसको दुत्कार करके घर से बाहर करने की चेष्टा की। अपमान ऐसा उसका हुआ, हृदय में छेद जैसे हो गया। वो प्राण त्याग करने के लिए वो चल पड़ा। प्राण इसलिए वो छोड़ करके इधर में चले, नहीं तो जाकर पूछा। वो उसके घर से निकल करके चल पड़ा, कुछ खाया नहीं। एक जंगल मिला, इतने में शाम हो गई, धीरे धीरे रात होने लग गई। सिंह इत्यादि गर्जन करने लगे जंगल में, हाथी चीरहार मारने लगे। डर के मारे प्राण छोड़ने के लिए आए, किंतु अब प्राण को बचाने के लिए कहां जाएं, कहते हुए एक टूटे फूटे मंदिर में उसने शरण ली। रात भर नींद नहीं आई, रोता बिलखता रहा। और वो जो वेश्या थी उसने देखा कि इसका मैंने सर्वस्व हरण कर लिया और घर से आज निकाल दिया। वो पीछे पीछे इसको मनाने के लिए चल पड़ी। वो भी वहां पर आई और ऐसे ही शाम हो गई। वो भी एक कोई रैन बसेरा खोजती हुई और उसी मंदिर के एक कोने में वो भी परस्पर ने परस्पर को देखा। आज उसके विरह में इसने भी कुछ नहीं खाया, उपवास रहे और रोती रही। जब सवेरा हुआ, प्रकाश हुआ, उसने देखा ये तो यहीं पर बैठा है। उसने देखा कि ये तो यहीं है। अब ये स्त्री दौड़ करके वेश्या उसके चरणों में गिर पड़ी, उसके आंखों से आंसू निकल रहे। उसने भी उसको पकड़ कर सांत्वना। बात ये थी उस दिन जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन नृसिंह चतुर्दशी का दिन था। उस दिन उसका उपवास झगड़े के कारण हो गया और रात भर जागरण हो गया और वो टूटा फूटा मंदिर था वो नृसिंह भगवान का मंदिर था। बाई चांस ही ये सब हुआ नहीं इच्छा करने से। इसका यह फल हुआ कि वही दूसरे जन्म में प्रहलाद महाराज हुए और वो जो वेश्या थी प्रहलाद महाराज जी की रानी थी। बचपन से ही कैसे रहे तत्व ज्ञान उनके अंदर में भरा पड़ा था। सुखदेव गोस्वामी जी माता के गर्भ में 12 वर्ष या 16 वर्ष थे और व्यास जी से उन्होंने सारी चीजों को वेद वेद उपनिषद भागवत इत्यादि का श्रवण किया और वो कैसे हुए। और प्रहलाद महाराज जी 60,000 वर्ष अपनी मैया के गर्भ में थे और नारद ऋषि उनको ये सब तत्व की बातें सुनाते थे। भागवत में लिखा है जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और सब लोगों को असुरों को मार काट करके उसकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कयाधु को पकड़ लिया। उस समय वो गर्भवती थी। उसने सोचा इंद्र ने इसके बच्चे को हमको मारना है, स्त्री से कोई भी हमको द्वेष नहीं किंतु बच्चा तो उसी का है। वो जैसे धुरंधर और तेजस्वी और वीर है ऐसा ही ये भी होगा और जगत में उत्पात मचाएगा इसलिए गर्भ से निकलते हैं उसे मैं मार डालूंगा। इसलिए उसको पकड़ कर लेकर के चल पड़े विमान से। इतने में नारद ऋषि ऊपर से कहीं बैकुंठ से आ रहे थे। उन्होंने कहा अरे इस स्त्री जाति को जो विलाप कर रही है तुम क्यों पकड़ करके ले जा रहे हो, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का गर्भ है और ये महाउत्पाती भयंकर दस्यु दानव होगा राक्षस होगा इसलिए ये निकलते हैं इसे काट डाल। तुम इसे मार नहीं सकते, मैं देख रहा हूं दिव्य दृष्टि से ये परम भागवत होगा, इधर से छोड़ दो नहीं मार सकते। तो नारद जी के कहने से उसने छोड़ दिया। नारद जी ने पकड़ लिया और पृथ्वी पर गया अपने आश्रम के पास ही में उसको लिए कुटी पर्ण कुटी दे दी और कहा रहो वहीं पर रहने लगी और नारद ऋषि के घर पर वहां कुटी में झाड़ू दे दी लकड़ी बिन करके दे दी इस तरह से सेवा करने लगी और उनके मुख से हरि कथा सुनने लगी। नारद ऋषि उसको सुनाने के बहाने नारद ऋषि के बहाने किसको सुना रहे हैं किनको सुनता कौन है भीतर में ये है गर्भ संस्कार। यदि माँ को पुत्र का पेट में है या लड़का है या लड़की है उस समय में भागवत की कथाएं सुने तत्व ज्ञान की बातें भगवान की बातें सुने कीर्तन करे कीर्तन सुने तो बच्चा जरूर वैसा ही होगा। धर्मात्मा का पुत्र फिर वो धर्मात्मा ये संस्कार होते हैं। इसलिए नारद जी जैसा ही प्रहलाद महाराज इसलिए बचपन से उसको समस्त तत्व ज्ञान थे। जब ये पैदा हुआ तो वो सेवा करते 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 नारद जी ने कहा जे तुम कुछ वर मांग लो, तुमने बहुत मेरी सेवा की। उसने कहा जब ही मैं चाहूं तभी हमारा पेट से बच्चा निकले, ऐसे न निकले, हमारा स्वामी आ जाए तो पेट से बच्चा निकले। ठीक है इसे 60,000 तपस्या की और इसके बाद में ब्रह्मा जी दौड़ करके आए बोले जी क्या वर चाहता है, अजय मैं अमर बन जाऊं, अजय अमर छोड़ करके अब दूसरा कोई भी वर मांग लो। तो उसने वर मांगा अमर ही जैसा, मैं दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं आकाश में नहीं मरूं पाताल में नहीं मरूं किसी महीने के अंदर मैं नहीं जन्म लूं तुम मरूं, मैं ऊपर और नीचे नहीं मरूं, ब्रह्मा आपकी बनाई हुई सृष्टि में से मनुष्य या कोई पशु जानवर सांप या देवता गंधर्व बाघ भालू इत्यादि हमको नहीं मार सकते। मैंने किसी न किसी प्रकार से उसने मांग लिया कि हमको कोई नहीं मार सके, मैं दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं आकाश में नहीं मरूं इधर में नहीं मरूं, मैं अस्त्र से नहीं मरूं शस्त्र से नहीं मरूं, जब मान करके आया तो एकदम जगत में उत्पात करने लग गया। उसी समय इसका ये बेटा हुआ चौथा, और उसका नाम उसने प्रहलाद रखा। 5 वर्ष स्कूल में दे दिया। उस समय में शुक्राचार्य नहीं थे, उसका पुत्र था संडामर्थ। संड माने होता है सांड, बेपरवाह चलता है, रास्ते से नहीं चलेगा, किसी की परवाह नहीं करता। यदि सामने कोई आ गया तो महाक्रोधी भी होता है, कामी भी होता है, लोभी भी होता है। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो ऐसे ही भगवान का तत्व ज्ञान नहीं। और एक अमर्क है, अर्क माने अंधकार, प्रकाश, अंधकार, और अमर्क माने होता है जहाँ पर प्रकाश है। मर्क माने होता है प्रकाश, अमर्क माने जहाँ अंधकार है, अंधकार ज्ञान नहीं है जी। उनके स्कूल में पढ़ने लग गया, शाम दाम दंड भेद इत्यादि सब पढ़ाने लग गया। 5 वर्ष की उम्र में अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, पूछा, अच्छा बतला तो बेटा, तुमने गुरु जी के यहाँ क्या सबसे अच्छी समझा, क्या विद्या तुमने सीखा, तुमको कौन सी चीज अच्छी लगी? तो उन्होंने कहा, तब सदम मन ने असुर वर्ज्य दे ही नाम, हे असुर वर्ज्य, असुरों में श्रेष्ठ, संसार में सबसे बड़ी विद्या यही है, मैंने उसी को अच्छा समझा। असुर वर्ज्य दे ही नाम,
चित्तात्म पातम गृहमंद कूपम जद बनम गतम हरि माश्रयेत। इस संसार को अंधकार समझो, हित्वात्म पातम, ये आत्मा का, इसमें यदि भोग में लिप्त हो जाएंगे तो आत्मा का विनाश हो जाता है, आत्मा का पतन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को सत्संगत में जाकर के भगवान का भजन करना ही ये सबसे बड़ी बात है। हमने तो इसी को सीखा, किसी प्रकार से सत्संग में रह करके एकांतिक रूप में भगवान का भजन करें। कौन भगवान है आगे बतला जी, ये कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अब इस श्लोक में बतलाया गया, गृहमंधकूपम वनम गतम जद हरिमाश्रय, अंधकूप की उपमा दी इस संसार से। एक व्यक्ति था वो कहीं जा रहा था, बीच में जंगल आया, बड़े बड़े लंबे चौड़े पेड़, बाघ भालू उसमें रहते थे। जब आगे गया तो देखा सामने से एक सिंह आ रहा है और गर्जन करके उसके ऊपर में टूट पड़ा। ये भी भागने की चेष्टा की, पेड़ लंबे लंबे मोटे मोटे, चढ़ नहीं सका। अब 1 सेकंड की देरी होने से उसको बाघ पकड़ करके खा जाएगा। इतने में एक कुआं दिख पड़ा और उस कुएं में पानी नहीं, उसमें खंडहर हो चुका था, उसमें सांप बड़े बड़े रहते थे, बिच्छू रहते थे, उसके ऊपर में कुछ पीपल के पेड़ कुछ हो गए थे, इसलिए उसको अंधकूप कहते हैं, दूर से मालूम नहीं पड़े। बस एक पीपल की 2 डाले थी, उसको पकड़ करके उसी के अंदर में कूद गया। जब कूदने की तैयारी कर रहा था नीचे, इतने में देखा कि सांप काले काले फण उठाए हुए उसको डसने के लिए तैयार है। प्राण सन्न हो गया, नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, अब दोनों डालों को ऐसे पकड़ गए दोनों हाथों से। इतने में कहां से एक सफेद चूहा एक काला चूहा निकला, जिस डाल को पकड़े हुए है उन दोनों डालों को कुतरने लग गया। अब दो 1 सेकंड की बात है, यदि पकड़ता भी है तो भी मरता है, वो गिरे जाएगा, वो काट देगा, और यदि ऊपर जाता है तो भी मरेगा, बाघ अभी सिंह अभी गर्जन कर रहा है, और नीचे जाता है तो सांप उसे काटेंगे, वो जरूर मरेगा, चारों तरफ में मृत्यु। भयभीत होकर के ऊपर में देखा, एक छोटी सी पतली टहनी में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और उसमें मधु लगी हुई है, और उसे सुंदर सुंदर मधु की लाल लाल बूंदें टपक रही। उसने मुख को बढ़ाया, मरता रहा हूं, थोड़ा चख तो लो, इसलिए जीभ बढ़ाया और एक बूंद उसने हाँ क्या मधुर। इधर तो वो चूहे दोनों काम कर रहे हैं, सांप भी तैयार हैं, बाघ भी तैयार है मारने के लिए। अब इस समय में सोचो जैसे इस समय क्या होगा, यदि पकड़ कर आता है तभी मृत्यु नीचे जाएगा, ऊपर में जाने से मृत्यु, चारों तरफ में मृत्यु ही मृत्यु है। किंतु ये जो एक बूंद जो मिला क्या मधुर है, यही अंधकूप है। हम लोग की दशा ऐसी ही है। ये मधु का बूंद क्या है, ये संसार का सुख। दो दिन के लिए दो बूंद न, दो दिन का कोई ठीक नहीं ये कब ये समाप्त हो जाएगा। यदि कहीं टहनी हिल गई तो क्या होगा, मधुमक्खियां उतर के एक साथ में मुख पर ही आक्रमण करती हैं, लाखों मधुमक्खियां जाएंगी, वो उसे भी मरा। आंख अंधी कर देगा तो उसे बीच से वो मर जाएगा, लाखों एक साथ में खाते, चारों तरफ में मिट्टी है। बस भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। इसलिए ये कहते हैं चित्वा गृहम अंधकूपम, ऐसे अंधकूप को प्रत्याग करके, आसक्ति शून्य होकर के या प्रत्याग करके भगवान का एकमात्र भजन करो। सुनते ही अपनी गोदी से उसे फेंक दिया। क्यों सिखलाया ऐसी बात, बच्चा कहां से सीखा? गुरु जी ने मैंने तो सिखलाया नहीं, तुमने नहीं सिखलाया तो कहां से सीखा, अभी तुमको हम मारेंगे। कहा जी हजूर मैंने नहीं सिखलाया, ये अपने स्वाभाविक रूप से ऐसा कहता है। गुरु जी बड़ी मुश्किल से हिरण्यकश्यप से बच्चे को लेकर के फिर स्कूल आए और बोले तू सच बता मैं तुम्हारा गुरु हूं, किसने सिखलाया? उन्होंने कहा मतिर्न कृष्ण परसो सतोवा, कृष्ण भगवान में, भगवान कृष्ण में मति जो होती है ऐसे नहीं होती, लाखों चेष्टा करके मनुष्य के आदमी नहीं करते हैं संसार के। ये तो बड़े सौभाग्य से यदि भगवान की कृपा हो और ऐसे संत की कृपा हो तब तो कृष्ण में मति लगती है। साधारण रूप में अफीम तो ये नशा है ना और विष है, अफीम जरा खा करके कुछ दिन देखा जाए फिर छूटेगा नहीं। अरे और की तो बात छोड़ो, तंबाकू लोग खाते हैं, यहाँ रख लेते हैं ना क्या करते हैं, सुपारी खाते हैं, किसी को नहीं छोड़ पाते। मैंने कभी किसी से कहा जी भाई वो हरि नाम करने के लिए कह रहे हैं, मैंने कहा जी सबसे पहले प्याज लहसुन छोड़ो, ये तो छूटना बड़ा भाई मुश्किल है, ये नहीं छूट। एक आदमी को मोच थी, सूबेदार थे, मिलिट्री में बहुत रफ और लंबे चौड़े थे, पहाड़ी थे लंबे, और उनकी गोफ ऐसी थी बनाए रखे थे, भगवान का भजन करेंगे तो ये पहले में केस को और इसको हटा करके तब दीक्षा ली जाती है। भाई मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता, ये तो प्राण से भी अधिक भारी, मैंने कि तराजू पर अपनी मोच और भगवान को रखिए कौन भारी है बतलाइए तो। अरे ये बात तो ठीक कह रहे हैं, भगवान ही बड़े हैं। तो फिर साथ ही साथ उन्होंने कृपा करके अब फिर भजन कर, साधारण चीजें नहीं छूट पाती हैं। भगवान भी तो देखेंगे कि हमको चाहता है तो हमारे लिए कुछ छोड़ सकता है कि नहीं, ये बुरी चीजें, ये सब गंदी चीजें हैं, प्याज लहसुन अफीम बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें क्यों नहीं छोड़ सकते हैं भगवान के लिए? एक सेकंड में छूट जाएगा, यहाँ तक कि देवता देवियों का भी भजन जो संसारी चीजें करके चीजों को क्लेश में देते हैं उनका भी सब छोड़ सकते हैं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। इसलिए एकांतिक चित्त से यदि भजन करने की लालसा है और अपने जीवन को सार्थक बना है तो प्रहलाद महाराज का उपदेश ये धारण करना चाहिए। वो गुरु गुरु नहीं उसमें कहते हैं, जो अपना ही भजन नहीं करते वो दूसरों को क्या सिखलाएंगे, इसलिए अपने भी नहीं होगा, वैसे कुछ जो लौकिक गुरु हैं उनके कहने से भी नहीं होगा, कैसे होगा? तो कहते हैं भगवान की कृपा यदि हो और उनकी कृपा से कुछ सच्चे संत मिल गए, उनके चरणों की धूली से अभिषिक्त होने के बाद ही में तो ये चीज हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो सरल चीज किंतु बड़ी कठिन चीज है।
एकांतिकता होना कृष्ण भजन में ये बड़ा भारी कठिन है। ये उनके विल से होगा। एक साधारण कथा से देखिए, एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, उसके पिता ने बहुत बार कहा माना नहीं। एक दिन अपने गुरु के पास में गया हुआ बच्चे को गोदी में लेकर, महाराज आप इसे एक बार कह दीजिए गुड़ मत खाओ, इसको बहुत रोग होता है, खुजली इत्यादि होती है, घाव हो जाता है, आप इसे कह दीजिए। मैंने कल ले आने तो चला गया, दूसरे दिन लाया। मैंने कहा बेटा गुड़ मत खाना है। सचमुच लड़के ने गुड़ खाना छोड़ दिया। पिता ने कहा कल ही आपने क्यों नहीं कह दिया, आज कह रहे हैं? तो कल इसलिए कि कल तक मैं गुड़ खाता था, इसलिए मैंने नहीं कहा, नहीं तो फिर हम जो कहते नहीं पालन करता, तो जो खुद ही नहीं भजन करता है दूसरों से क्या कराएगा। इसलिए पहले सचरित्र हो करके इन सब बुरी आदतों से दूर करके भगवान का भजन करो। जो करता है वही दूसरों को करा सकता है, दूसरे नहीं कर सकते, अपने मन से भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए वैष्णव के चरणों में अभिषिक्त हुए बिना बिना गुरु जी कृपा के भजन में लगना और भजन करना बड़ा भारी कठिन है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये दुखमय संसार से हम कभी भी पार नहीं हो सकते हैं, यह एकदम त्रिसत्य है। प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी। एक दिन उसका गुरु कहीं बाहर चला गया, बच्चों में बैठ गए। बच्चे ने कहा जब चलो हम खेलने चलेंगे। प्रहलाद महाराज जी ने कहा आज तो खेलेंगे नहीं, आज दो चार बातें हम लोग हर चर्चा करें। हर चर्चा क्या? अच्छा सुनो, हरी चर्चा किसको कहते हैं? देखो बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। क्या श्लोक? कौमार आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है बचपन से ही छोटी उम्र से ही भगवान का भजन करें। क्यों करें? पहले संसार भोग लें, पहले पढ़ लिख लें, किसी एक विषय में एक्सपर्ट होएं, काफी संपत्ति होगी उसका भोग वो कर लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे बूढ़ी होने पर। कहते हैं यदि बीच में मृत्यु हो गई तो क्या करेगा? कोई गारंटी है जब कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा? कब मृत्यु हो जाएगी? किसी की कोई गारंटी नहीं, केवल एक व्यक्ति की गारंटी थी 7 दिन की। किसकी? और किसी की गारंटी नहीं है भाई, 7 दिन की उनकी गारंटी। हम लोगों का कोई ठीक नहीं है कब जीवित रहेंगे कब मर जाएंगे। इसलिए आज ही से कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। आज ही करना है, एक सेकंड भी उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये सब कुछ अपनी दृढ़ता के ऊपर में निर्भर है। इसलिए कह रहे हैं कौमार काल से, क्यों? बुद्धि अभी निर्मल रहती है। जैसे बच्चों को सिखलाया जाता है सीख ले जाता है, 60 वर्ष के बाद में किसी को उपदेश देकर के उसका मति कोई बदल नहीं सकता, एक उसमें पक्की अपनी धारणा करीब करीब हो जाती है, इसलिए उसका संस्कार नहीं बदल सकते। इसलिए बचपन में बच्चों को जो शिक्षा देंगे वही सब ग्रहण करते हैं। उसने कहा नहीं भाई अभी हम भजन नहीं करेंगे, कुछ दिन संसार में रह लें, देख लें सुन लें तब करेंगे, बूढ़े होने पर करेंगे। तो बूढ़े होने में तो तुम्हारी यदि बच भी जाएगा तो कमर ही नहीं सीधी होगी, तो तू क्या भजन करेगा? तो फिर भजन करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? पहले से हम कमा करके तो रख लें, एक ऐसी स्थिति कर लें जिससे कि हम लोग भजन कर सकेंगे। तो उसके लिए कहते हैं देखो कोई संसार में दुख नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, किंतु दुख क्यों आता है? क्यों आता है? इसलिए यदि सुख भी होगा तो अपने आप आएगा, लाख चेष्टा करेगा कुछ नहीं होगा, और यदि सुख लिखा है तो सुख आ जाएगा। इसलिए कुछ नए कर्म करो, भाग्य के ऊपर में भी टिकना नहीं है। भाग्य माने क्या चीज? पूर्व जन्म का किया हुआ कर्मों का फल। इस जन्म में तुम नहीं करेगा वैसा ही पहले जैसा करेगा तो तब वैसा ही दुख आएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष भविष्य की चिंता नहीं करते कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि ये चिंता करते हैं
हम कैसे भव सागर से निकल करके हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय और मधुर हो, ये कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो सुख के लिए चेष्टा नहीं करता, सभी करते हैं। यहां तक कि राष्ट्रसंघ इत्यादि में भी सुख के लिए चेष्टा करते हैं, किंतु होता है उल्टा, दुख ही दुख मिलता है। विवाह करते हैं सुख के लिए और दो दिन के बाद में लड़की अपने पति के घर से चली आई, नहीं रख सके। किस क्या हुआ, बच्चे पैदा हुए वो यदि दुष्ट निकले तो ऐसा भी होता है। इसलिए सुख के लिए हम करते हैं किंतु होता है दुख। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य जत आयु व्यय परम तथा न विंदते क्षेम मुकुंद चरणाम। इसे भगवान के चरणों के अतिरिक्त सुख कहीं नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों का तुम भजन करो, उन पर आश्रय करो। तुमने पहले नहीं भजन किया इसलिए तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है। तुम समझो कि यह हाड़ मांस का पुतला मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, इसमें आए हैं हम। बिना भगवत भजन से मिले, भगवान से मिले, हमको सुख और शांति नहीं। रुपए से ही मिलती तो सबसे बड़ा संसार में धनी रावण था, उसकी प्राचीर, उसके महल सब गांव जितने लंका में थे वो सब सोने के थे, जवाहरात के थे, कहाँ सुख रहा। उसके वंश में प्रदीप देने के लिए कोई नाती तक और पोते तक नहीं रहे, सब 1 लाख पुत्र,
1.25 लाख
नाती, कोई वंश में नहीं रहा दिया और बाती देने के लिए। इसके द्वारा सुख नहीं है। सुख होगा, हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। यदि हम लोगों ने उनका भजन किया बचपन से तो हमको सुख हो सकता है, शांति इस जन्म में भी दूसरे जन्म में भी। इसीलिए कृष्ण कभी कभी संतों को भेजते हैं जगत में अपनी शक्ति को, और कभी कभी खुद इस जगत में आते हैं, जैसे नारद इत्यादि को भेजते हैं जगत, संतों को भेजते हैं, और कभी कभी राम या कृष्ण नृसिंह इत्यादि रूप में जगत में आते हैं। राम और कृष्ण रूप में लीलाएं करते हैं और अपने पीछे लीलाओं को छोड़ देते हैं। उन लीलाओं को, उनके नाम को एक बार भी यदि श्रवण करे कोई चित्त से तो संसार के सारे दुख मिट जाते हैं। आप लोगों ने सबरी का नाम सुना था होगा। एक दीनहीन निज कुल में जन्मी थी, किंतु उनके गुरु थे मातंग ऋषि। जब वो उनके यहां भजन होता था, कीर्तन होता, हरि कथा होती राम की, बड़े बड़े साधु संत लोग आते थे, ये भी बहुत दूर से बैठ करके सुनती, बहुत दूर से। एक दिन वहां के ऋषियों ने कहा, ये नीच जाति की शूद्रा है, यहाँ आती है पास में, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे और आपसे संबंध नहीं रखेंगे। मातंग जी ने कहा, जिस तुम लोग भले ही नहीं आना, और उसको बुला करके कहा, जे एकदम हमारे निकट बैठो, यही सबसे योग्य है, यही ब्राह्मणी है। यदि भगवत भजन का गुण नहीं है तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, और शूद्र में यदि भगवत भजन करने की लालसा है तो वो शूद्र नहीं, वही ब्राह्मण है। गुण से आदमी ब्राह्मण होता है। ब्रह्म को जो जाना नहीं तो वो ब्राह्मण कैसे रहा, केवल सूत्र से ब्राह्मण नहीं होता, भगवत भजन से होता है। इसलिए तुम ही सबसे योग्य हो। इस तरह से ये हमारे ऋषियों का भी विचार ऐसा था, इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम लोग सब विषयों में असहाय हैं, जीवित रहने में भी असहाय हैं, दुखों को दूर करने में भी असहाय है, एक साधारण क्रोध भी दूर नहीं कर पाते हम लोग। इसलिए पहले भगवान का शरणागत हो करके, पहले भगवान कहाँ मिलेंगे, पहले गुरु का शरणागत हो, गुरु के निर्देश से उस तत्व को जानो कि मैं ये शरीर नहीं, इसके अंदर मैं आत्मा हूँ, और जब तक आत्मा का भगवान से संबंध नहीं होगा हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कलयुग में सबसे सरल सहज तरीका भगवान की उपासना का है, भगवान का नाम कीर्तन का, इसे और कोई सहज तरीका नहीं। आप अशुद्ध हैं, आप चाहे जिस कुल में जन्मे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो,
सिख हो कोई भी हो भगवान के नाम में सबका अधिकार है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी अधिकार सुनने में है, वो सुन सकते हैं। इसमें मैं अपवित्र हूँ, एक आदमी मरने बैठा है, टट्टी हो रही है, उस समय भी भगवान का नाम कर सकता है। पुराणों में उल्लेख है हनुमान जी का, एक समय एक तेली तेल पेरता था, कल्हू चलाता था, बैल के आंख को बंद करके और उसे घुमाता और हाट हाट चल चल करता रहता। दिन भर रात भर में कभी भगवान का नाम नहीं लेता। एक दिन नारद जी ने कहा, तू भगवान का नाम नहीं करता है, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, मुझे समय नहीं मिलता। तो छट्टी करते समय क्या करता है, तो उसमें कर सकते हो, कहां कर सकते हो। नारद जी चले गए, वो शाम को छट्टी जब करने गया रात में, तो वहीं पर बैठ करके और राम राम करने लगा। जहां पर ये नाम होता है वहां पर हनुमान जी जरूर आते हैं, वो वहां पर।